शांति। वैराग्य की कला, आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने पहले देखा कि कैसे देह से वैराग्य हो, दूसरा देखा हमने कि कैसे देह के संबंध जो भी हैं, कैसे हम उनसे वैराग्य धारण करें। आज हम देखेंगे देह के जो साधन हैं, वस्तु, वैभव, पदार्थ, कैसे हम उन्हें यूज करते हुए भी उनके प्रभाव से मुक्त रहें, ताकि अंत समय में कोई भी वस्तु, वैभव, व्यक्ति, पदार्थ, कोई भी चीज हमें याद ना आए। अंत समय में एक बाबा की याद में ही हमारा शरीर छूटे। आत्मा जब सबसे पहले पहले इस देह का आधार लेके साधनों को यूज करती है, तो वो अनेक प्रकार के साधनों को यूज करती है। जीवन अर्पण करने के लिए उसके लिए जरूरी भी है, लेकिन उन साधनों को यूज करते हुए भी कैसे हम उनसे डिटैच रहे, वो हम देखेंगे। और ब्राह्मण जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए वैराग्य का होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे जीवन के अंदर वैराग्य नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लगाव होगा, राग होगा। राग माना हमारे जीवन के अंदर कहीं भी फिर लगाव होगा। इसलिए हमें कोई भी साधन को यूज करते हुए कैसे हम उनसे वैराग्य व्रति धारण करें, कैसे उनके प्रभाव से मुक्त रहें, वो हम देखेंगे। और वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन उनको यूज करते हुए भी उनके प्रभाव से हमें मुक्त रहना है। तो सबसे पहला है वस्त्र, कपड़े। तन को ढकने के लिए वस्त्र जरूरी है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कपड़ों में ही हमारी बुद्धि अटक जाती है। बाबा ने हमें वाइट ड्रेस दी है जो कि सिंपल है, रॉयल है, लेकिन कई बार कोई हम अच्छी वस्तु देखते हैं, कोई अच्छी साड़ी देखी, कोई शॉल देखा, तो हमारी बुद्धि उसमें चली जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा स्वेटर देखते हैं, कहीं अच्छा मफलर देखा है ना, कोई भी किसी का अच्छा दुपट्टा देखा, कोई टोपी देखी, तो ये सब चीजें वस्तुएं देख के हमारे अंदर भी इच्छा होती है कि हम भी इनको धारण करें। लेकिन हमें यही सोचना है कि बाबा ने जो हमें ड्रेस दी है वही सबसे बेस्ट है ना। जितना हमारा जीवन सादा होगा उतना ही हमारा बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहेगा, नहीं तो जो भी वस्तुएं होंगी उनमें बुद्धि हमारी चली जाएगी तो बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। और जो भी वस्तु भगवान से हमारा कनेक्शन तोड़ दे तो वो एक न एक दिन दुख का कारण बनेगी। सब टेम्परेरी है वस्तुएं, तो कहते हैं ना आज है कल नहीं है, ये सब चीजें तो आज है कल नहीं है, नष्ट होने वाली है, विनाशी है। लेकिन भगवान से बुद्धि मेरा टूट जाए तो वो वस्तु भी व्यर्थ है मेरे लिए, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, कई बार मूल्यों में आता है ना, बाबा कहते हैं कि 108 छत्तियों वाला कपड़ा पहनो तब देहभान तन से निकले, है ना, इतना देहभान भरा हुआ है। और बाबा ने हमें बताया कि तुम्हारे जो वस्त्र हो वो सिंपल हो, रॉयल हो, ऐसे वस्त्र ना हो जो किसी की बुद्धि उसमें जाए, किसी व्यक्ति को उसके प्रति आकर्षण हो, है ना, सिंपल हो और साफ स्वच्छ हो, ना बहुत महंगे हो और ना बहुत सस्ते, क्योंकि ज्यादा सस्ते भी होते हैं तो भी लगता है कि हमने तो बिल्कुल ही साधारण लगता है अपने आप को। लेकिन बाबा ने हमें हर चीज में बैलेंस सिखाया है बीच का, क्योंकि इतने ऊंचे बनने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई देख के कहे यार ये कैसे कपड़े पहने हैं, है ना। सिंपल हो, सादे हो, साफ हो, स्वच्छ हो, रॉयल हो, हाँ। और प्रेस की भली, चलो कई बार होता है कि प्रेस नहीं भी है। जगदीश भाई जी का हम सुनते हैं कि वो सेवा करने के लिए जाते थे तो पजामा भी इतना ऊंचा ऊंचा होता था, लेकिन उनकी स्थिति, हाँ सुनते हैं ना हम दादियों के कि वो प्रेस भी कैसे करते थे, अपने तकिए के नीचे अपने कपड़े बिछा देते थे और सुबह को देखते थे बिस्तर के नीचे, और उसके नीचे फिर तब उठते थे वो अपने आप ही प्रेस हो जाते थे, है ना। लेकिन उनके अंदर इतनी स्थिति, उनकी इतनी ऊंची श्रेष्ठ थी कि उनको देह का भान ही नहीं था कि हम क्या पहन रहे क्या नहीं पहन रहे। हम सुनते हैं हमारी जो देवता दादी थी सेंटर पे, वो भी कोई भी कपड़ा होता था ना तब तक वो बिल्कुल चत्तियां लगा लगा के भी उसको यूज करती रहती थी। छोटे छोटे टुकड़े भी कहीं पड़े होते थे तो उनको भी लगा लगा के यूज करती रहती थी। कभी उनकी बुद्धि ऐसे नहीं जाती थी कि ये तो पुराना हो गया तो मैं इसको फेंक दूं नया ले लूं, लेकिन उसको सिलाई करके भी सुधार करके भी उसको पहनती रहती थी। तो इस तरह से कोई भी जो हम वस्त्र पहनते हैं उसमें हमारी बुद्धि ना जाए, है ना। और दूसरा हम देखेंगे भोजन। भोजन में भी बहुत बुद्धि जाती है ना। और लेकिन परमात्मा ने बताया है कि भोजन जो हमारा हो, अन्न जो हो, वो पवित्र, पवित्रता और सदाचार रीति से कमाया हुआ धन का होना चाहिए। और ना ही केवल वो सदाचार रीति से कमाए हुए धन का हो, लेकिन वो बना हुआ भी जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और योग युक्त स्थिति में रहते हैं, उनके हाथ का बनाया हुआ हमें भोजन स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो हमें भी अन्न दोष लग जाता है और वो जो कि हमारे मन की स्थिति को डावाडोल कर देता है। इसलिए दुनिया के अंदर साधु संन्यासी क्या मानते हैं कि वो भिक्षावृत्ति को ही अपनी एक मुख्य धारणा मानते हैं और उनकी जो उदर पूर्ति होती है वो भिक्षा अर्जन द्वारा ही अपनी उदर पूर्ति करते हैं, है ना। क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह से हम इस तरह से अगर हम अपना पेट उदर पूर्ति करते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो एक तो मनुष्य के अंदर लोकलाज नहीं रहती है और उसका अभिमान भी चूर चूर हो जाता है। लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि कर्मों की गुह्य गति, कि अगर हम गृहस्थियों का हाथ का ही पकाया हुआ भोजन खाते हैं, है ना क्योंकि नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम गृहस्थियों के हाथ का भोजन खाते हैं, है ना, किसी विकारी के द्वारा बनाया हुआ अगर हम भोजन खाते हैं तो उससे हमारी मन की स्थिति कभी भी ऊंची नहीं बन सकती। और बाबा ने कर्मों की जो गति बताई उसमें बताया कि अगर हम उनके हाथ का भोजन खाते हैं तो हमारा जन्म भी फिर उन्हीं के घर में होता है, उन्हीं के साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हमें तो इस तरह से नहीं उदर पूर्ति करनी है। बाबा कहते कि मांगने से मरना वाला, सेवा ही हमारा मुख्य धारणा होनी चाहिए। इसलिए एक योगी का जो भोजन है वो शुद्ध हो, पवित्र हो, अल्पाहार हो, सात्विक हो, संयमित भोजन हो। इतना हैवी भोजन ना हम कर ले कि सांस ही लेना मुश्किल हो रहा है, पूरा फुल हो जाता है ऊपर तक। लेकिन भगवान की याद में रह के, परमात्मा की याद में रह के, साइलेंस में और भगवान के भोजन की महिमा करते हुए उस भोजन को स्वीकार करना चाहिए, है ना। जीभ के रस से परे हो गया ना, आसक्तिवश नहीं खाना है। अगर हमारी उसमें आसक्ति होगी तो जिस चीज में आसक्ति होती है उसमें हमारी बार बार बुद्धि जाती है और वहीं पे माया आ जाती है, है ना। जीव के रस में चले गए तो फिर वो बाबा से बुद्धि हट जाता है और वो बुद्धि खाने में चली जाती है ना। खान आज क्या बना है, कल क्या बनेगा, उसी में हमारी बुद्धि चली जाती है। इसलिए हमें खाना भी हमारा संयमित होना चाहिए, है ना, और बाबा की याद में रह के खाना भोजन। कहते हैं कि अगर हम कोई भी भोजन असंतुष्टता से, गुस्से से या नाक मुंह चढ़ा के भोजन को स्वीकार करते हैं तो वो भी मांसाहार के समान माना जाता है। इसलिए जो भी भोजन करें उसे बाबा की याद में शांति से, बाबा की महिमा गाते हुए, और जिन आत्माओं ने भी वो भोजन बनाया है उन आत्माओं को भी दुआएं देते हुए प्यार से भोजन को स्वीकार करना है, तो ही उस भोजन का महत्व है। नशा होना चाहिए कि कितनी मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं जो भगवान के घर का भोजन खा रही हूं, भगवान के घर के भोजन से मेरी पालना हो रही है, है ना। देवताएं भी जिस भोजन के लिए तरसते हैं, इतना पवित्र भोजन मुझे मिल रहा है ना। ऐसा नहीं कि कोई जाते हैं भंडारे में देखने के लिए, आज मेन्यू देखने जाते हैं, आज क्या बना है, ये बना है तो आज नहीं खाना। लेकिन कुछ भी बनाया जाओ, भले आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके प्रति हमारी दृष्टि ऐसी ना होगी अरे ये बना ये तो मुझे नहीं खाना, ये तो मुझे पसंद नहीं है। कुछ भी बनाए आप, खाओ या नहीं खाओ, थोड़ा खाओ, दूसरी चीज खा लो, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में घृणा भावना है, है ना। हाँ, ब्रह्मा भोजन का कितना महत्व बाबा बताते हैं कि भक्ति मार्ग में भी कितना महत्व है कि थाली धो के भी भक्त लोग पीते हैं, और ये तो स्वयं भगवान के घर का ब्रह्म भोजन है, तो उसकी कितनी महिमा होनी चाहिए, कितना उसके प्रति रिगार्ड हो, है ना। तो इस तरीके से हमें अगर भगवान के घर का भोजन समझ के खाएंगे और जरूरत के लिए खाएंगे, है ना, इच्छावश नहीं, आसक्तिवश नहीं, तो उसका फिर हमारे पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, है ना। इस तरीके से हम भोजन से भी डिटैच रहें, आसक्तिवश भोजन ना हो, है ना। खाना पीना सोना और बाबा के गीत गाना। और तीसरा है मकान, है ना, जहाँ घर में हम रहते हैं। लेकिन उस घर को क्या समझना है कि ये घर भी जो किसका है, बाबा का घर है, बाबा का सेवा स्थान है, मैं निमित्त मात्र हूँ, है ना। हम मूल्यों में सुनते हैं ना कि किसी के पास जैसे कोई माता होती है, उनके पास कोई प्लॉट है, कोई जमीन है, तो वो भी हमारे पास अगर है तो वो भी बाबा के कार्य में लगाना है, क्योंकि उसमें गीता पाठशाला चलेगी, अनेक आत्माओं का उससे कल्याण होगा, अनेक आत्माएं अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे उसमें आके, उनकी दुआएं मिलेंगी, तो उससे हमारा भी खाता जमा होता है। और बाबा कहते हैं कि इस समय जो मकान या जमीन अपना सेवार्थ लगाते हैं, ईश्वरीय सेवार्थ लगाते हैं, तो अनेक जन्म उन्हें मकान का सुख मिलेगा। इस समय वो जो हॉस्पिटल बनाते हैं उन्हें निरोगी काया, है ना, निरोगी काया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे वो जन्म जन्म, कोई बीमारी नहीं आएगी। और जो धन लगाते हैं उन्हें जन्म जन्म धन मिलेगा, धन की कभी किसी कमी नहीं होगी। और जो इस समय स्कूल खुलवाते हैं, है ना, जन्म जन्म उनकी शिक्षा अच्छी होगी, है ना, उनके लिए मतलब इस समय जो भगवान के कार्य में जो कुछ भी हम लगाते हैं उसी आधार पे हमें मिलता है। और मकान भी है तो उसको अपना घर नहीं समझ के रहना है, ये सोचना है कि बाबा मालिक है और मैं इसमें किराएदार हूँ, है ना। भगवान भगवान का घर है, मैं निमित्त मात्र हूँ, है ना, जो भी है कुछ भगवान का दिया हुआ है। क्योंकि इस समय अगर भगवान को अर्पित करेंगे तो अंत समय जब में जब विनाश होगा ना, तो हमें दुख की फीलिंग नहीं आएगी। नहीं तो अपनी चीज कोई नष्ट होती है तो उसमें दुख की फीलिंग आती है कि मेरा ये चीज नष्ट हो रही है, लेकिन समय रहते हुए अगर हमने उसको सफल कर लिया तो अंत समय में हमें बोझ का अनुभव नहीं होगा, है ना। हम निश्चिंत रहेंगे, खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे कि हमने तो पहले ही समय रहते उसको सफल कर लिया, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो इस समय अगर बाबा के घर में हाँ ईश्वरीय बैंक में जमा कर देना है, इस समय अगर बाबा के घर में जमा करेंगे हम, तो बाबा कहते हैं कि इस 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे, गारंटी है। चौथा है वस्तुएं,
21 जन्मों का महल लेने का वस्तु
है। इस समय बाबा ने जो है ना, बाबा ने बताया ना कि इस समय जो लगाते हैं उन्हीं को फिर प्राप्ति होती है ना। और अगला है वस्तुएं, मनुष्य की आदत होती है ना वस्तुओं को संग्रह करने की, छोटी छोटी वस्तुओं को वो इकट्ठा करता है, जहां पे भी कोई अच्छी चीज देखेगा तो इच्छा होती है अंदर लेने की, उसको अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं ना। कोई महंगी चीज देखी, जैसे कोई फ्लावर पॉट देखा ना, कोई कहीं टेबल है, कोई छोटी गिफ्ट आइटम है, कोई भी हम देखते हैं तो हमारे अंदर इच्छा होती है उसको लेने की, लेकिन उसका हमारे लिए क्या यूज है वो हम भले ही नहीं सोचते, लेकिन अच्छी लगी तो ले लिया। जैसे कोई फ्लावर पॉट है, हमने वो खरीद लिया, बहुत महंगा फ्लावर पॉट खरीदा, लेकिन वो किसी ने तोड़ दिया, है ना, तो कितना गुस्सा आता है, हमारी मन की स्थिति कैसी हो जाती है उस समय, है ना। हम भूल ही जाते हैं कि हमारी मन हमारे अंदर जो खुशी थी उस फ्लावर पॉट की वजह से हमारे जीवन की वो खुशी चली जाती है, हमारी मन की स्थिति डावल डोल हो जाती है। लेकिन हमें यही सोचना है कि वस्तुएं हैं, वस्तुएं तो आज हैं कल नहीं है, तो विनाशी हैं, लेकिन जो मेरी खुशी जो उससे नष्ट हुई, मेरी जो स्थिति उससे खराब हुई, वो मेरे लिए कितनी कीमती है, उसको मुझे फिर से अपने जीवन में खुशी लाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी, कितना उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी तो चलो हमें साधन मिल गया है कि भगवान से कनेक्शन जोड़ो और ले लो, लेकिन जीवन के दुनिया के अंदर तो कोई जानता ही नहीं इस चीज को, वो तो खुशी नष्ट हो रही है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी भी चीज से उनकी खुशी नष्ट हो जाती है, उनके पास तो कोई साधन ही नहीं है उसको दोबारा से हासिल करने का। तो इस तरीके से जो भी विनाशी चीजें हैं उनसे हमें, उनको यूज करते हुए भी उससे डिटैच रहना है ना। ज्ञान की समझ से उनसे न्यारे होते चले जाना है कि ये चीजें तो विनाशी हैं, और जो मेरी अपनी असली प्रॉपर्टी है वो खुशी, शांति, शक्ति, ये सब मेरे अविनाशी खजाने हैं। अगला है ट्रांसपोर्ट, है ना, हाँ, जैसे मोबाइल, वो मोबाइल अलग टॉपिक लिया है ना। फिर हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट या यातायात के साधन जो हम यूज करते हैं, है ना, सभी यूज करते हैं यातायात के साधन, तो कुछ ना कुछ, स्कूटी, गाड़ी, बस, रिक्शा, ऑटो, है ना, सभी यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा सेंटर दूर है थोड़ा, लेकिन हम सुबह मुरली सुनने के लिए जाते हैं, स्कूटी से मुरली सुनने के लिए जाते हैं, घर दूर है हमारा सेंटर तो उससे मुरली के सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूटी खराब हो गई, पेट्रोल नहीं है, कितनी बातें हो जाती हैं, कोई लेके चला गया, तो फिर आप कैसे जाएं सेंटर पे, है ना, पैदल जाना, है ना। अब साधन है हमारे पास, कोई और साधन है, हम रिक्शा से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, तो भले ही उससे जाएं, है ना, लेकिन अगर कोई भी साधन नहीं है तो हमें पैदल जाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कदमों में पद्मों की कमाई है, और जितना कदम हम भगवान के घर की ओर चलेंगे उतना हमारे पद्मों की कमाई जमा होती चली जाएगी। और बाबा कहते हैं ना, मूल्यों में कितनी बार आता है कि मेरी याद में तुम यहां से दिल्ली तक भी जाओगे तो कभी थकेंगे नहीं, है ना, शरीर ही होगे, बाबा की याद में जाएंगे तो कभी थकेंगे नहीं। तो बार बार अपने आप को ये स्मृति दिलाते रहना, बाबा के महावाक्य, बाबा के महावाक्यों को बार बार याद करते रहेंगे ना, तो हमारे अंदर वो पावर आती जाएगी, शक्ति आती जाएगी, आत्मा में बल भरता जाएगा। ये कैसे हम अशरीरी होके बाबा की याद में कितना भी मील पैदल चले तो उसका हमें थकान नहीं होगी, उसका अनुभव नहीं होगा कि हमें थकान हो रही है ना, और ही आनंद आएगा, क्योंकि भगवान की श्रीमत का दिल्ली में बोल आबू, हाँ, आबू रोड तक के लिए बाबा ज्यादातर बोलते कि तुम्हारे भक्तों की लाइन वहां आबू रोड तक लगेगी, आबू रोड, है ना, कि वहां तक पैदल जाओ, नहीं हमारे घर से तो दिल्ली कितना, 2-3 घंटे का रास्ता होगा, मतलब उससे घर, यहां से दिल्ली तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, यहां से आबू रोड ठीक है, है ना। तो बाबा कहते कि कदमों में पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी, बाबा की याद में रह के जाएंगे। देह का भान होगा तो कोई बीमारी होगी तो उसमें बुद्धि जाती रहेगी, मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बाबा की याद में शरीर ही होके जाएंगे, देह भान से मुक्त होके जाएंगे, तो हमारी कमाई भी हो जाएगी, है ना, और हमारा समय भी सफल हो जाएगा, जितने कदम, कदम में पदम, है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी साधन को यूज करते हुए उस स्मृति में रहे कि बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी है इसके प्रति, उस चीज को सोचेंगे ना तो हम वो साधन को यूज करते हुए भी उससे डिटैच रहेंगे। हाँ, सेवा के लिए भले यूज करना है लेकिन बाबा कहते हैं उसमें अटकना नहीं है। और नेक्स्ट है म्यूजिक या सॉन्ग्स, गीत जो हम योग में चलाते हैं, है ना, बाबा की याद के कितने अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं जो कि हमारे योग का आधार बन जाते हैं, है ना। बाबा की इतने स्नेह भरे और इतने ज्ञानयुक्त गीत बने हुए हैं कि बाबा से संबंध जुड़ जाता है ना, कनेक्शन जुड़ जाता है। हम गीत सुनना, अगर हमारा बुद्धि भी भटक रही है, कहीं मन हलचल में है, लेकिन हम बाबा के गीत सुनते रहते हैं तो 2-5 मिनट में 10 मिनट में ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि, मन स्थिर होने लगता है, है ना। कितने अच्छे अच्छे बाबा की याद के गीत बने हुए हैं। बाबा की याद का वो साधन है, लेकिन हमें उन पे भी डिपेंड नहीं रहना है कि अगर गीत चल रहे हैं तो ही हमारी बुद्धि शांत हो रही है या योग लग रहा है, नहीं तो बुद्धि में व्यर्थ ही चले जा रहा है। हम गीत सुन तो रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम गीत सुनते सुनते ही हमारा टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन बाबा के पास तक ही नहीं जाते, गीत गाते हैं ना, हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, है ना, बुद्धि कहीं और उड़ गई, है ना, गीत गाते हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में। लेकिन ये भी अपने अंदर चेक करते रहना, हम उड़ के जा भी रहे हैं बाबा के पास या गीत ही सुनने में टाइम पूरा हो रहा है, है ना। हाँ, तो उसी में फिर वो बुद्धि हमारी उसी चिंतन में चलती रहती है, क्योंकि जहां हमारी आसक्ति होती है बुद्धि योग, उसी में बुद्धि योग लगा रहता है। तो कोई भी गीत सुनते हुए भी हमें उसको आधार नहीं बनाना है अपनी ज्ञान योग का, है ना। और बाबा उड़ के बाबा के पास चले जाना है और बाबा से वहां मिलन का, उसकी शक्तियों का, उसके गुणों का अनुभव करना है। कई बार ऐसा जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आते हैं ना, कई बार ऐसा होता है ना कि गीत ही हमारे बंधन बन जाते हैं कई बार, योग में, है ना। योग भी कई बार हमारे गीत उसमें बंधन बन जाते हैं, योग में गीत भी। लेकिन शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं तो क्योंकि हमें इतना ज्ञान का पता नहीं होता तो वो गीत हमारी साधना का आधार बन जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान योग हमें करना आ जाता है तो फिर वो बुद्धि को तोड़ने वाले भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि फिर उन्हीं गीतों में लगी रहती है और उन्हीं के जो शब्द होते हैं ना, उन्हीं के भाव में हम रहते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें बताया कि तुम्हारी याद कैसी होनी चाहिए, आत्मा समझ के परमपिता परमात्मा को याद करना, साइलेंस में रह के, डीप साइलेंस में आत्मा चली जाए, है ना, इस शरीर से बिल्कुल डिटैच होकर बाबा को याद करना है। और उसके लिए हमें इस देह से डिटैच होने की जरूरत है। अगर हम गीते सुनते रहेंगे तो शरीर से कब डिटैच होंगे, है ना। इसलिए वो गीत सुनते हुए भी, चाहे गीत हो या ना हो, लेकिन हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। इसलिए पहले गीत चलाते थे, अभी म्यूजिक चलाते हैं। पहले शुरू में ज्ञान में आते तो गीत चला के योग करते हैं, लेकिन जब धीरे 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 अवस्था थोड़ी अच्छी हो जाती है तो म्यूजिक चला के गीत, है ना, मेडिटेशन करते हैं और कमेंट्री से भी योग करते हैं, है ना। कमेंट्री के जो शब्द होते हैं उन्हीं को सुनते 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 हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ जाता है। लेकिन हमें अपनी भी अपनी कमेंट्री तैयार करनी है, अपनी सेल्फ की, क्योंकि हर आत्मा की सोच अलग है, उसकी समझ अलग है, उसका पुरुषार्थ अलग है। हमें अपनी खुद की अंदर जो हमारी भावनाएं हैं, सोच है, समझ है, उसके आधार पर कमेंट्री तैयार करनी है बाबा से कनेक्शन जोड़ने के लिए। और केवल गीतों पर डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन हमारी जो साधना हो वो निराधार हो, क्योंकि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है तो उसके लिए गीतों की जरूरत नहीं है, है ना। डीप साइलेंस में जाके याद करना है। शुरू शुरू में तो होगा क्योंकि उसको नहीं, उनके लिए बताया ना, नए नयों के लिए तो वही अच्छा है, क्योंकि उनको ज्ञान की इतनी समझ नहीं होती ना, तो गीत वो माध्यम बन जाते हैं भगवान से कनेक्शन जोड़ने का। लेकिन जब ज्ञान की समझ आ जाती है तो उसके बाद फिर वो म्यूजिक ही अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमें शरीर से डिटैच होने की कला आ जाती है। और नेक्स्ट है हमारा चित्र या फोटो जो हम योग में लगाते हैं बाबा के, बाबा का फोटो लगा रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम बाबा का फोटो ही देखते रहते हैं, है ना, वो फोटो योग में बैठते हैं लेकिन वो फोटो ही देखते रहते हैं। हाँ, फोटो देखते हैं वो, चलो अच्छा है बाबा से हम दृष्टि ले रहे हैं और बाबा से हमारी आंखें ये हैं, लेकिन कई बार हमारा चिंतन कुछ और ही चलता रहता है। सामने देख कुछ रहे हैं लेकिन चिंतन कुछ और ही चल रहा है। इसलिए कोई भी चित्र या फोटो हम देखते हैं, उसको देखते हुए भी, है ना, हमें यही कोशिश करनी है कि चैतन्य में जाएं बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि ले, बाबा की गुण और शक्तियों का अनुभव करें, क्योंकि चैतन्य में जाएंगे तो उससे हमारी कमाई भी होगी, है ना। बाबा के पास अगर हम बार बार इस शरीर से डिटैच होकर जाएंगे तो हमारा फरिश्ता स्वरूप का भी अभ्यास पक्का होगा, कभी परम धाम में, कभी सूक्ष्म वतन में, है ना, हाँ, या कभी सुख धाम में भी जाएं सतयुग में। हाँ, उधर बाबा नहीं होगा लेकिन अपने संपूर्ण स्वरूप को देख
कर सकते
हैं। अभी बाबा का हाथ पकड़ के जा सकते हैं सतयुग में। बाबा कहते हैं सतयुग में तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन इस समय जो चाहे कर सकते हैं, इस समय बाबा का हाथ पकड़ के जा सकते हैं सतयुग में। हाँ जी, कहीं भी ले जा सकते हैं ना, इस समय देख लेना है बाबा को भी अपने साथ सतयुग में, सतयुग में कि मैं भी हूं और बाबा भी, और बाबा हम दोनों ही पुष्पक विमान में बैठे हैं। तो इस तरीके से कोई भी, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि कोई भी चित्र देखते हुए उसमें विचित्र को देखो, है ना, क्योंकि अगर चित्र को देखेंगे तो चित्र को देखने में हमारी कमाई नहीं है, उस चित्र के अंदर विचित्र को देखेंगे तो उसमें हमारी कमाई है, है ना। इसलिए कोई भी फोटो होता है, कोई ट्रांसलेट के आगे बैठ जाते हैं तो उसको देखते हुए भी हमारे अंदर संकल्प क्या चल रहे हैं, हमारी सोच कैसी चल रही है ना, उस पर निर्भर करता है। तो इन चीजों को भी हमें आधार नहीं बनाना है, बल्कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू में ये सब चीजें अच्छी हैं, क्योंकि हमें शुरू में इन चीजों का पता नहीं है कैसे योग लगाना है, किसको देखना है। लेकिन जब हम बार 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 कोई चीजों को देख लेते हैं ना, तो हमारी आंखों में उसकी चित्र फोटो छप जाती है, तो फिर हमें उस फोटो की दरकार नहीं है। फिर हम कहां पे भी रहते हुए, कुछ भी करते हुए, ज्ञान की समझ के आधार से कैसे भी अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। इसलिए बाद में फिर कहीं पे भी बैठो योग करने के लिए, हाँ है ना। और देखो भाई जी ने बताया ना कि देखो चित्र हर जगह नहीं होते, कहीं हम बैठे हैं बाबा की पहाड़ी पे जाते हैं, अब वहां पे चित्र तो है नहीं, लेकिन अगर हमें चित्र देख के ही योग करने की आदत होगी तो फिर हमारी बुद्धि भटकेगी, है ना, हम कंफ्यूज होंगे कि कैसे हो। लेकिन हमें उस चीज का अभ्यास करते जाना है कि कैसे हमें बाबा से कनेक्शन जोड़, किसी भी चीज को आधार नहीं बनाना है अपनी साधना का, नेचुरल हो। और नेक्स्ट है मोबाइल, डिजिटल वर्ल्ड है ना। मोबाइल को आजकल कितनी सेवाएं मोबाइल से चलो हो रही हैं, है ना। मोबाइल कितना अच्छा साधन है आज, हर सारी क्लासेस मिल जाती है, मुरली हम टाइम से पहले पढ़ सकते हैं, नहीं लेकिन हम टाइम से पहले पढ़ सकते हैं, उसके अंदर मुरली आ जाती है, कभी भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास ही 24 घंटे मोबाइल रहता है, और हमें किसी चीज को कैरी अलग से भी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक मोबाइल के अंदर सब कुछ मिल जाता है, चाहे उसके अंदर क्लासेस हो, है ना, किसी की अव्यक्त वाणियां हो, कितनी सारी डॉक्टर रूहाल अलादीन का चिराग है, उसके अंदर हमें सारी चीजें मिल जाती है, मुरली भी मिल जाती है। पहले हम सुनते थे कि बाबा की मुरली चलती थी, दो दिन बाद, तीन दिन बाद तक मुरलियां पहुंचती थी सेंटरों पे, तब वो मुरलियां पढ़ते थे। लेकिन आज ये मोबाइल कितना अच्छा साधन है, पहले दिन ही मुरली आ जाती है, तीन दिन पहले मुरली आ जाती है, और PDF मुरली का वो आता है, उसमें पहले एक एक हफ्ते की पहले मुरली आ जाती है, हाँ। तो कितना अच्छा साधन है वो, अगर हम पुरुषार्थ करना चाहें, है ना, और उसमें कोई भी क्लासेस सुन सकते हैं, बाबा की गीत, जो भी नया गीत आता है बाबा का, सब मिल जाते हैं उसके अंदर, कुछ भी सर्च करो। तो मोबाइल एक साधन भी है, लेकिन जब हम किसी लक्ष्य को लेकर उसको यूज करते हैं, सचिन भाई जी बोलते हैं ना हमेशा कि मोबाइल जब भी यूज करना है तो किसी ना किसी लक्ष्य को लेके ही उसे यूज करना है। अगर लक्ष्य के बिना उसको यूज करने की कोशिश करेंगे है ना, तो वो आपको भी यूज करेगा और उसमें हमारा टाइम वेस्ट चला जाएगा, है ना, और कहां से कहां हम पहुंच जाएंगे वो हमें पता ही नहीं चलेगा, गूगल घूम कर देगा, है ना, इंटरनेट के जाल में फंस जाएंगे। तो इस तरीके से हम मोबाइल को एक पुरुषार्थ का अगर साधन बनाना चाहें, उसमें से पॉजिटिव देखना चाहें, तो हम पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छा साधन बना सकते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि पुरुषार्थ करते करते हम उसमें व्यर्थ में चले जाते हैं, और इधर उधर की चीजें देखने लगते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और मोबाइल में ज्यादा हमारी बुद्धि रहती है तो हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता फिर, है ना, उसी के अंदर हमारी बुद्धि लगी रहेगी, उसी के अंदर बुद्धि लगी रहती है, और वो स्वचिंतन और प्रभु चिंतन की बजाय मोबाइल चिंतन भी रहते हैं, तो उसी में हमारी बुद्धि चली जाती है। इसलिए कोई भी साधन को हमें यूज करते हुए केवल उसके जो बेनिफिट है, क्योंकि बाबा ने हमें हर जगह से पॉजिटिव देखना सिखाया है, तो जो मेरे लिए उसमें से योग्य है केवल मैं उसी को उसमें से यूज करूं, बाकी काम हुआ और मोबाइल एक तरफ और मैं एक तरफ, फिर उसको यूज नहीं करना है नहीं वो चलो हमारे इधर भी रखा है तो भी हमसे अलग है, है ना, उसको हम देख नहीं रहे, उसमें ये नहीं देख रहे कि उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। शिवानी दीदी का भी हमेशा सुनते हैं ना कि कोई भी मैसेज आता है तो उसको काम उसको पढ़ने से पहले ही डिलीट करो, क्योंकि अगर पढ़ भी लिया ना तो वो अंदर वो चिंतन चलता रहेगा कि ये था मैसेज, ये मैसेज भेजा था, किसने भेजा था उसने, तो इस तरीके से हमारी बुद्धि उसमें फंस जाती है। और ये इतनी सूक्ष्म चीजें होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते, बहुत लंबा टाइम हो जाता है जब, फिर हम ज्ञान योग की अच्छी अभ्यास करते हैं तब हमें थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हाँ यहां से मेरी बुद्धि फंस रही है इसमें, इस इधर मेरी बुद्धि इसमें वेस्टेज जा रही है, यहां से मुझे निकालने की जरूरत है, नहीं तो समझ ही नहीं पाते, उसी में लगे रहते हैं, सोचते हैं कि हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को हाँ उसको समझने के लिए भी बहुत समझ की जरूरत है कि कैसे हम अपने आप को इन चीजों को साधनों को यूज करते हुए कैसे उनसे डिटैच रहें। जैसे बताया ना कि साधन है, आज है कल नहीं है, लेकिन हमारी साधना उन पे डिपेंड ना हो, है ना। मोबाइल में न्यूज देखेंगे, इधर उधर की है ना, इधर उधर की न्यूज देखते रहेंगे, स्टेटस देखते रहेंगे, है ना। लेकिन वही चीजें देखनी है जो हमारे काम की है, बाकी कोई भी अगर ऐसी वैसी चीज देखी तभी उसे अपनी बुद्धि से डिलीट कर देना है, नहीं तो फिर वो अंदर चली गई तो कभी ना कभी फिर वो बाहर आएगी। इसलिए साथ के साथ चेकिंग करके उसे वहां से बुद्धि से डिलीट कर देना है। आगे आएगा तो फिर बाद में उसमें टाइम वेस्ट होगा और वो ज्यादा हमारी बुद्धि को डिस्टर्ब करेगी, है ना। इसलिए साथ के साथ उसको तो ये मोबाइल की माया है, कैसे मोबाइल में बुद्धि हमारी अटक जाती है ना। इसलिए उसको केवल अपने पुरुषार्थ के लिए यूज करना है, बाकी उसमें व्यर्थ में नहीं जाना है। और नेक्स्ट है फैशन, है ना। आजकल हर जगह फैंसी आइटम मिलते हैं, है ना। इसलिए हर जगह क्या लिखा रहता है, फैशन के इस युग में गारंटी की इच्छा ना रखे। ना फैशन के इस युग में गारंटी की इच्छा ना रखें, लेकिन हमें क्या समझना है कि फैशन के जीवन में त्याग तपस्या की इच्छा ना रखें। अगर हमारे जीवन के अंदर फैशन है तो हम त्याग तपस्या नहीं कर सकते ना, उसके लिए हमें उससे डिटैच होने की जरूरत है। और फैशन के इस जीवन में प्रभु प्राप्ति की इच्छा ना रखें। फैशन के जीवन में ज्ञान योग की इच्छा ना रखें। नहीं, फैशन के जीवन में अविनाशी सुख शांति खुशी, है ना, सुख की इच्छा ना रखें। क्योंकि अगर हमारे जीवन के अंदर ये सब फैशन होगा ना, तो फिर हमारी बुद्धि उसी में लगी रहेगी, आज कौन सी नई चीज आई है ना, किस कलर का नेल पेंट चाहिए, आईलाइनर कैसा है, ये लिपस्टिक कैसे है, तो उन्हीं चीजों में, फैशन की चीजों में फिर हमारी बुद्धि चली जाती है ना। और फैशन की इन चीजों में बुद्धि गई तो हमारा बुद्धि योग भगवान से टूट जाएगा। लेकिन हमें क्या सोचना है कि हमें ये आसुरी श्रृंगार नहीं करना है, भगवान आया हमारा दिव्य गुणों से श्रृंगार करने के लिए, भगवान की मीठी यादों से, उसके गुणों से, ज्ञान रत्नों से स्वयं का श्रृंगार करना है ना। और ये आसुरी श्रृंगार तो क्या, ये पुराना शरीर है, आज हम इसको श्रृंगार करेंगे ना, लेकिन इसमें समय, एनर्जी, मनी, पैसा, सब कुछ वेस्ट जाता है। इसलिए शरीर का श्रृंगार जो करना है वो दिव्य गुणों से श्रृंगार करना है। और कैसे हम सतयुग में देवी देवताओं के रूप में कितने ज्यादा श्रृंगारे हों, उस संपूर्ण स्वरूप को अपने देखना है कि कितना हम उससे श्रृंगारे हुए हैं। लेकिन इस दुनियावी आसुरी श्रृंगार से क्या फायदा, नहीं को कि बुद्धि उसमें जाए तो वो भी एक पाप का माध्यम बन जाती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तो तुम्हारा पुरानी जूती है, इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से डिटैच रहो। केवल यही सोचना है कि बाबा की याद से, ज्ञान रत्नों से स्वयं का भी श्रृंगार करना है, और जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आती है उनको भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का ही श्रृंगार कराना है। और यही सोचना है कि जैसे दुनिया के अंदर कोई भी अच्छी, कितनी भी अच्छी चीज हो, किसी भी वस्तु में, किसी भी अच्छी चीज में मेरी आंख ना डूबे, है ना, उसकी बार 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 स्मृति ना आए, उससे बुद्धि को घटाना है। और फिर नेक्स्ट है अलार्म, है ना। हम अलार्म का यूज करते हैं, सुबह उठते हैं अमृत वेला तो रात को अलार्म लगा के सोते हैं ताकि सुबह टाइम से उठ जाए, है ना। कई बार कितना होता है कि अलार्म हम बजाते तो हैं लेकिन फिर वो अलार्म बजा, उसको बंद किया और सोचते 5 मिनट बाद फिर से उठ जाएंगे, है ना। और कितनी बार ऐसा होता है कि अलार्म बजता रहता है, आसपास वाले सब उठ जाते हैं लेकिन वही व्यक्ति नहीं उठता, आजू बाजू वाले सब उठ जाते हैं लेकिन वही व्यक्ति नहीं उठता। लेकिन बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले स्लोगन था ना कि परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है ना, जो अमृत वेले उठा देती है। इसलिए रात को जब हम सोते हैं तो हमें अपना सारा पोता मेल बाबा को देके, सारी दिनचर्या सुना के, बाबा की याद में, बाबा की गोदी में, बाबा के साथ सोएंगे ना तो अपने आप ही सुबह आंख खुल जाएगी। उसके लिए फिर हमें अलार्म, संकल्प का अलार्म लगाना है, ये स्थूल अलार्म नहीं लगाना, भले ही चलो हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, लेकिन वो अगर हमारे मन में इच्छा नहीं होगी ना उठने की, तो हम उसे बंद करके सो जाएंगे। लेकिन जब हम अपने संकल्प का अलार्म लगाते हैं ना, दृढ़ संकल्प का, हाँ मुझे 4 बजे उठना है, हाँ मुझे 3 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, तो वो हमें संकल्प मदद करता है, वो ऑटोमेटिक हमारी आंख खुल जाती है फिर उस टाइम पे, है ना। इसीलिए कोई भी अलार्म का या इन चीजों का भी आधार नहीं लेना है मुझे, अपनी साधना को इन पे आधारित नहीं करना है ना। रात को ही अपने आप को ये संकल्प देके सोना है कि सुबह कितना वरदानी समय है, कितना अमूल्य समय है, भगवान से वरदान प्राप्त करने का समय, गुण शक्तियां प्राप्त करने का समय, स्वयं को भरपूर करने का समय, उस टाइम का मुझे आनंद लेना है। इस तरीके से जब अपनी बैटरी को चार्ज करके सोएंगे रात को, तो अपने आप ही आंख खुलेंगी और फ्रेश भी फील होगा। नहीं तो उठेंगे लेकिन फिर भी भारीपन लगता है। उसके समय के महत्व को जान के सोएंगे तो अपने आप ही आंख टाइम पे खुलेगी और उसमें हमें फ्रेश फील होगा और उमंग भी आएगा। अच्छा, मतलब चलते फिरते वो सोने वाला सिस्टम है ना। इसलिए केवल नींद से नहीं जागना है, अपनी चेतना को भी जगाना है ना। आत्मा को भी अवेयरनेस हो कि कौन सा ये समय चल रहा है, क्या मुझे इससे प्राप्ति करनी है, किससे मेरा मिलन है, वो सब चीजों को जान के उठेंगे तो फिर हमारा वो समय भी सफल होगा। नहीं तो हम साधारण बैठेंगे आके इधर उधर सो जाएंगे ना। इसलिए कोई भी साधन का हमें आधार नहीं लेना है। और अमृत वेले के समय को बाबा कहते हैं कि अगर अमृत वेले समय सोते हो तो माना तुम कांटों की शैया पे सो रहे हो, क्योंकि इतना वो वरदानी समय, इतना भगवान से प्राप्ति का समय, उस समय अगर सोएंगे तो जन्म जन्म के लिए भाग्य सो जाएगा। जिन सोया तिन खोया। और नेक्स्ट है रेड लाइट, है ना। हम योग में बैठते हैं तो रेड लाइट का आधार लेते हैं। रेड लाइट चली होगी तो हमें याद रहता है कि हाँ हमें योग करना है, क्योंकि परमधाम का कलर भी कैसा है, रेड है, गोल्डन रेड कलर का है, तो वो हमें इजी बनाता है उसकी स्मृति दिलाने के लिए, अपने घर की स्मृति दिलाने के लिए। लेकिन कई बार देखते हैं कि रेड लाइट है तब तक तो योग चल रहा है, लेकिन जैसे ही व्हाइट लाइट हुई, है ना, सीधा ऊपर से नीचे ही आ जाते हैं, स्थिति भी हमारी ऊपर से नीचे आ जाती है। तो ये भी आधार हुआ ना, हमने उस चीज का आधार लिया, भले ही रेड से व्हाइट लाइट हो गई लेकिन हमारी स्थिति नीचे नहीं आए, है ना, ऊपर ही रहे, हमारी उसी अवस्था में रहे। एकदम से हम बातचीत में आ जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सो रहा था, कौन क्या कर रहा था। लेकिन व्हाइट लाइट होने के बाद भी हमें यही सोचना है कि परमधाम से अवतरित आत्मा में यहाँ पाठ बजाने के लिए आई हूं, तो उसी स्मृति में रह के हम करेंगे तो वो वही वाइब्रेशन फिर हमसे चारों तरफ फैलते हैं। नहीं तो वो तो अल्पकाल का हो गया, थोड़े टाइम पे हमने योग लगाया, साधनों पे डिपेंड हो गई वो भी हमारी साधना। लेकिन योगी जो है वो कर्मेंद्रिय जीत है, राजयोगी माना कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी। लेकिन फिर हम इन चीजों का आधार ले रहे हैं तो ये आधार हटते फिर हमारी साधना टूट जाती है। इसलिए इन सब चीजों का आधार लेते हुए भी हमें हर टाइम पे ये अटेंशन रहना चाहिए, कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि इन चीजों, ये तो साधन केवल निमित्त मात्र है मुझे वो स्मृति दिलाने के लिए, लेकिन मुझे अपनी साधना को इन पर डिपेंड नहीं करना है। कैसा भी माहौल हो, कैसा भी कुछ हो, लेकिन मेरा कनेक्शन हमेशा भगवान से जुड़ा रहे। कोई भी चीज भगवान से कनेक्शन तोड़ने वाली न बन जाए ना। जो चीजें भगवान से कनेक्शन जोड़ती हैं, केवल मुझे उन्हीं का आधार लेना है। और लास्ट है स्थान, प्लेस, है ना। कोई भी स्थान होता है तो हम सोचते हैं वहां बैठे हैं तो ही हमारा योग लगेगा, है ना। कोई ना कोई हम स्थान को ही अपना आधार बना लेते हैं। देखते हैं ना कि सब कहाँ कहते हैं कि पांडव भवन जाएंगे योग करने, इधर उधर से सब आते हैं ना कि पांडव भवन जाएंगे तो योग करेंगे। लेकिन अगर जहां आप हो, क्या वहां पे भी आपका योग लगता है, या अगर पांडव भवन गए तो ही योग लगेगा, वहां कहीं है तो आज योग ही नहीं है। तो ये भी हमने स्थान को आधार बना लिया। ये बात अच्छा है कि हाँ यहाँ का त्याग तपस्या की भूमि है, बाबा की सेवा की भूमि, तपस्वी भूमि, वरदानी भूमि है, यहाँ पे हमारा योग लगाना सहज हो जाता है, लेकिन हमने उसको आधार नहीं बनाना है। कहाँ भी हम रहते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम मास्टर ज्ञान सूर्य बन, ज्ञान की किरणें जहां पे भी फैलाओगे तो तुम उस स्थान को परिवर्तन कर सकते हो, स्थान के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। तो हमें उस स्मृति के अंदर रहता है कि जहां पे भी हम चाहे, और बाबा ने हमें केवल एक ही जगह स्थान पे बैठने की शिक्षा नहीं दी कि एक ही जगह बैठ के तुम्हें योग करना है, उठते बैठते चलते फिरते घूमते खाते पीते सोते कोई भी कर्म करते बाबा की याद में रहना है। एक ही जगह बैठ के योग करेंगे तो वो भी हट योग है। राजयोगी माना वो कहां पे भी है लेकिन उसकी स्थिति ऊंची है, कहीं पे भी रहते वो उसका कनेक्शन भगवान से जुड़ा रहे। मोजो का संगम युग, मोजो का योग है ना, इसलिए हर पल भगवान से मिलन मनाते मोज का अनुभव करना है, मूंझना नहीं है। हमें अपने अंदर ये स्मृति होनी चाहिए कि हम कौन है, राजयोगी हैं, सहज योगी हैं। तो उसके लिए हमें किसी स्थान को आधार बनाने की जरूरत नहीं है, कहां पे भी रहते हुए हमारा बुद्धि योग भगवान से लगा रहे, चाहे हम कमरे के अंदर हैं, चाहे हम डाइनिंग के अंदर हैं, चाहे सोते समय है ना, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो भी हमारा कनेक्शन एक सूक्ष्म तार भगवान से जुड़ी रहे। किसी भी चीज को हम आधार बनाएंगे तो वो आधार हटा और साधना टूटी। कहते हैं ना, एक स्लोगन आता है ना कि समझदार वो है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। इसलिए कोई भी चीज को हमें आधार बना के नहीं रहना है, आधार हटते ही हमारी साधना कब टूट जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा, हम तो धोखे में रह जाएंगे। हम तो सोचेंगे हम तो इतने अच्छे योगी थे, इतना अच्छा हमारा योग लगता था, सब कुछ था, लेकिन वो किसी न किसी चीज को हमने आधार बनाया था, वो आधार हटा और वो साधना भी फिर हमारी टूट जाती है। इस प्रकार कोई भी साधन को यूज करते हुए हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारी साधना इतनी पावरफुल हो, अगर साधना हमारी पावरफुल है तो वो अनेक साधनों को भी ले आएगी, क्योंकि साधना में बहुत बल होता है ना, साधना में बहुत बल होता है। इसलिए सदा स्मृति रहे कि हमारी जो साधना है वो निराधार है ना। किसी भी चीज, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ, कोई भी मेरी साधना को भंग नहीं कर सकता, मैं उन सबसे अधिक पावरफुल हूं। साधन तो निमित्र मात्र है लेकिन मेरी साधना अविनाशी है, अखंड है। तो हम इस तरीके से इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इन साधनों को यूज करते भी इनके प्रभाव से डिटैच रह सकते हैं। ओम शांति। 12 पहला है वस्त्र, पहला है वस्त्र ना कपड़े, दूसरा है भोजन, तीसरा बताया मकान, चौथा वस्तुएं, पांचवा यातायात के साधन जो भी हम ट्रांसपोर्ट के साधन यूज करते हैं, छठा है सॉन्ग्स, म्यूजिक सॉन्ग्स या गीत, सातवा है चित्र फोटोज जो हम लेते हैं, आठवा है फैशन, फैशन की जो वस्तु हम यूज करते हैं, नौवा अलार्म, रेड लाइट और स्थान मोबाइल ना। 12 पॉइंट्स बताए थे ना। ओम शांति।
ہے.